क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेद भक्त बृंद की ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यये नास्त प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी वृंदावन में पधारे सब वैष्णवों को मेरा अनेक अनेक कोटि नमस्कार जो इस कार्यक्रम में इधर बलराम हॉल में बैठे हैं उपस्थित हैं सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं ताकि केवल आपके आशीर्वाद से ही मैं कुछ प्रभुपाद जैसे बताएं भगवान के बारे में बता सकूं। आज का श्लोक अध्याय 8 स्कंद 8 अध्याय 3 श्लोक नंबर 30
श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमाना नैते यदोपसस्रुपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमाना नैते यदोपसस्रुपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् श्री श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपसृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्
माताजी यदोपसपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो श्रीशुक उवाच शब्दात
और
शब्दात तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री शुक उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार गजेंद्रम गजेंद्र को उपवर्णिता जिसका वर्णन निर्विशेषम किसी विशेष व्यक्ति के लिए ना होकर किंतु ईश्वर के लिए यद्यपि वह यह नहीं जानता था कि ईश्वर कौन है। ब्रह्मा आदया, ब्रह्मा शिव इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता विविध नाना प्रकार के लिंग विदा पृथक पृथक स्वरूपों से अभिमाना अपने आप को पृथक सत्ता मानते हुए ना नहीं एते सभी सदा यदा जब उपसस्रुपुहु पास आया निखिल आत्मकत्वात् श्री भगवान के हर एक के परमात्मा होने से भगवान के हर एक के परमात्मा होने से तत्र वहां अखिल ब्रह्मांड का अमरमय देवताओं से युक्त जो शरीर के केवल बाहरी अंग है हरि ही श्री भगवान जो हर वस्तु को छीन सकते हैं अविरासीत प्रकट हुए हाथी के समक्ष। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था तो उसने ब्रह्मा जी शिव जी इंद्र चंद्र इत्यादि देवताओं का आवाहन नहीं किया। अतएव इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आए किंतु क्योंकि भगवान श्री हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तात्पर्य गजेंद्र के वर्णन से लग रहा है कि वह किसी परमात्मा सत्ता को लक्ष्य कर रहा था। यद्यपि उसे यह पता ना था कि यह परम सत्ता कौन है, उसने अटकल लगाई ऐसी कोई परम सत्ता आवश्यक है, अवश्य है जो सबसे ऊपर है। ऐसी स्थिति में श्री भगवान के विविध अंशों ने यथा ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र इत्यादि ने सोचा कि यह गजेंद्र तो सहायता के लिए हमें नहीं बुला रहा है, यह तो उन ईश्वर को बुला रहा है जो हम सबके ऊपर हैं। जैसा कि गजेंद्र ने वर्णन किया है श्री भगवान के विविध अंश हैं जिसमें देवता मनुष्य तथा पशु सम्मिलित हैं जो विभिन्न रूपों से आच्छादित हैं। यद्यपि देवताओं के जिम्मे ब्रह्मांड के विविध भागों की देखभाल का उत्तरदायित्व है किंतु गजेंद्र ने सोचा कि ये सब उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ है। हरिम विना नैव मृतिम तरन्ति, कोई भी व्यक्ति किसी को जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के संकट से बचा नहीं सकता। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही मनुष्य की भौतिक संसार के खतरों से रक्षा कर सकता है, कर सकते हैं। अतएव इस भयानक संसार से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाता है, किसी देवता के पास नहीं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7:20 में पुष्टि की गई, कामस्तैस्तैहुतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता, जो लोग अज्ञानी हैं वे क्षणिक भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये देवता जीव को भौतिक संसार के खतरों से नहीं बचा सकते। अन्य जीवों की तरह देवता भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य शरीर के बाह्य अंग मात्र हैं। जैसा कि वैदिक मंत्रों में कहा गया है, स आत्मा अंगन्यान्या देवता, शरीर के भीतर आत्मा रहता है और शरीर के विभिन्न भाग जैसे हाथ पांव बाह्य हैं। इसी प्रकार समग्र विश्व के आत्मा नारायण या भगवान श्री विष्णु है और सारे देवता मनुष्य तथा अन्य जीव उनके शरीर के अंग हैं। यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्योंकि वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर जीवित रहते हैं और जब जड़ों को पानी दिया जाता है तो वृक्ष के सारे अंग को भोजन भोजन किधर गए विभिन्न भाग जैसे हाथ पांव हैं, इसी प्रकार समग्र विश्व के आत्मा नारायण या भगवान हो गए। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वृक्ष अपने जड़ों के बल पर जीवित रहता है और जब जड़ों को पानी दिया जाता है तो वृक्ष के सारे अंगों को भोजन मिल जाता है। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें, जो सबके आदि मूल हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, किंतु वे हमारे अत्यंत समीप रहते हैं, क्योंकि उनके पास उनका वास हमारे हृदय में होता है। जो ही श्री भगवान यह समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य पूर्णतया उनकी शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, जो ही वे तुरंत कार्यवाही करते हैं। फलतः यद्यपि गजेंद्र की रक्षा करने के लिए देवता नहीं आए, किंतु उनकी भाव भ्रवण स्तुति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हुए। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता गजेंद्र से अप्रसन्न थे, बल्कि वास्तव में जब भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है तब अन्य सारे देवताओं भी पूजा हो जाती है। यस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्टम्, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यथा तरोन्मूलनिषेचनेना तुष्यन्ति तत्स्कन्धभुजो पशाका, प्राणोपहाराच्छयतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य।
जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना, शाखाएं, उपशाखाएं तथा अन्य सभी भाग ऊर्जित होते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार उदर में भोजन के पहुंचने से इंद्रिय तथा शरीर के अंग चैतन्य खो उठते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से उनके अंश रूप देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 4:31-14। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जाती है तब सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रसंग ऐसा है, गजेंद्र मगरमच्छ के घड़ियाल के वश में आ गया और वो गजेंद्र को पकड़ लिया। गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं भगवान को और स्तुति कंप्लीट हो गया है। फिर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने गजेंद्र ने स्तुति किया है और भगवान तुरंत प्रकट हो गए हैं। भगवान ही प्रकट हुए हैं, नारायण प्रकट हुए हैं, श्री हरि प्रकट हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई देवता को उन्होंने बुलाया है, किसी देवता का सहाय नहीं लिया। क्यों देवता का सहाय नहीं लिया? किसी को भी बुला सकता था, क्योंकि गजेंद्र का मेन मुख्य लक्ष्य था कि मैं ये संसार का जन्म मृत्यु चक्र से बाहर आना है। तो उनके प्रार्थनाओं में यही था, हे भगवान मुझे ये जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकालिए। उनको समझ में आ गया कि ये जो घड़ियाल मुझे पकड़ा है ये तो बहुत बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होता और मेरा शक्ति इतना नहीं है कि मैं कुछ बच के बाहर आ जाऊं। तो भगवान के शरण में आ गया। एक्चुअली भगवान को जब बुलाते हैं भगवान आ गया। फिर भगवान आने के बाद हम देख सकते हैं 32 श्लोक में जब भगवान को देखता है गजेंद्र, तुरंत फिर कमल पुष्प को निकाल के हे नारायण मेरा नमस्कार स्वीकार करो, बस इतना ही कहता है। और बहुत बार हम सोचते हैं कि वो बहुत पूजा कर रहा था, फूल निकाल के भगवान को समर्पण कर रहा था, फिर भगवान आए। नहीं, एक्चुअली हम जैसे देखते हैं आज 30 हो गया, 31-32 में हम देखेंगे कि भगवान जैसे ही आ गया है ये देखते हैं गजेंद्र, देख के फिर फूल निकालते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं। तो ये हम पिछले बार भी हमने डिस्कस किया था कि ये गजेंद्र एक्चुअली जीव है और माया पकड़ लिया है। हर जीव को माया अपने वश में कर लेती है और जन्म मृत्यु चक्कर में फंसा देती है। जो भगवान को भूल जाता है वो जन्म मृत्यु चक्कर में ही रहना पड़ता है। तो हमारे आचार्यों ने, बहुत सारे आचार्यों ने बताया कि जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है, कृष्ण का भजन करो। इवन शंकराचार्य जी भी बताए हैं अपने भजगोविंदम, जो स्तुति 31 या 32 श्लोक इसके अंदर है, पहला श्लोक ही बता रहे हैं, भजगोविंदम भजगोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे। देखो हे मानव, हे मोहग्रस्त मनुष्य, आप गोविंद का भजन करो। गोविंद का भजन करने से क्या होगा? केवल गोविंद का भजन, गोविंद से प्रेम करने से ही जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आ सकते हैं। मरण समय में, मृत्यु समय में व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकता है। मेनली शंकराचार्य जी के जो भी फॉलोअर्स है वो बड़ा पंडित होते हैं। हाँ, संस्कृत का बहुत बढ़िया उच्चारण, संस्कृत का नॉलेज, संस्कृत का जो ज्ञान है, संधि विभाजन ये वो, एक एक श्लोक में अलग अलग अर्थ, इसमें पांडित्य अपना ये करके सिद्ध करके, और बहुत बार भगवान को ही भूल जाते हैं और अपना पांडित्य को दिखाने में ही लग जाते हैं। हर एक श्लोक में कैसे कैसे अर्थ निकालना है, ये करना है, वो करना है। इसलिए शंकराचार्य जी उनके शिष्यों को वार्निंग दे रहे हैं, अरे भाई आप इतना व्याकरण ये वो करने से मृत्यु के समय में व्याकरण तुम्हें रक्षा करेगा क्या? भगवान कृष्ण को भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तुम मूर्ख हो अगर तुम अपना व्याकरण, अपना पांडित्य को अपने बहुत ऊंचा समझ रहे हो। मरण समय में ये किसी काम का नहीं। तो अगला श्लोक में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये हम बहुत बार सुनते हैं, सौतिनिया में बहुत बार ये ही सुनाया जाता है, मगर उनका भक्ति अलग हो जाता है, कृष्ण के ऊपर उतना श्रद्धा नहीं होता है। मगर शंकराचार्य जी बार बार यही कहते हैं, अगर जन्म मृत्यु चक्कर में बार बार जन्म मृत्यु, ऐसे माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार करना बहुत बहुत मुश्किल है, और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्णा कृपा करके मेरी इससे रक्षा करो। तो केवल कृष्ण ही हमें उद्धार कर सकते हैं, केवल हरि ही हमें उद्धार कर सकते हैं ये जन्म मृत्यु चक्कर से। तो यही सिद्धांत को गजेंद्र समझते हुए ऐसा लग रहा है वो भगवान के शरण में चले गए, भगवान के शरण में आया, और एक्चुअली उनको कौन भगवान है ये उनके दिमाग में नहीं आया, मगर भगवान तो है जो सबसे उन्नत है, उनके शरण में मैं जा रहा हूं, उनके शरण में चले जाता है। अगर हम जड़ का, जड़ को पानी देते हैं तब भी हमें हर वृक्ष के हर बाग को पानी पहुंचता है, ऐसा नहीं हम ऊपर देंगे पानी नहीं जा रहा है, ऊपर देंगे पानी इससे कोई फायदा नहीं, ये मूर्खता कहलाता है। वैसा ही इसमें
सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है,
वैसा ही अगर हम पेट में आहार डालते हैं तब हमारा पूरा शरीर में शक्ति आता है। अगर पेट में नहीं डालते हैं, मैं सेब को मैंने काटा हूं, हाथ अगर सोचता है मैं खा लेता हूं, हाथ नहीं खा सकता है। हाथ जो भी है सहायता करके हेल्प करके पेट में डालना पड़ेगा। ये सिंपल लॉजिक हम समझना चाहिए। देवता ऐसा ही है भगवान का, हाथ के जैसे भगवान कृष्ण का, और सब देवता भगवान से जो भी मिलता है उसको वर के रूप में वरदान सब भक्तों को देते हैं। तो ये फंडामेंटल चीज जो है ये हम कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर किसी देवता के मंदिर में, जैसे शिवजी के मंदिर में जाते हैं, तो हम शिवजी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें कृष्ण का भक्ति दीजिए। हे भोलेनाथ, आप कृष्ण का इतना महान भक्त हो, हमें थोड़ा सा आप हमें भक्ति दीजिए। तो शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान का भक्ति देते हैं। अगर लक्ष्मी जी का पूजा कर रहे हैं कोई नारायण को छोड़ के, ये तो बिल्कुल मूर्खता है। जब नारायण को प्रसन्न करते हैं, जब नारायण घर में है तो लक्ष्मी देवी घर में रहेगी। अगर नारायण घर में नहीं है और लक्ष्मी देवी आके देखती है, अगर आ गए तो भी देखती है, अरे मेरा प्रभु का आदर सत्कार नहीं है, तो लक्ष्मी माँ क्या करती है, चले जाती है। जिस घर में मेरा पति का सम्मान नहीं हो रहा है, उस घर में मैं कैसे रहूं? आप सोचिए, एक पार्टी में पति पत्नी दोनों पार्टी में गए हैं और पत्नी को सम्मान कर रहे हैं और पति देव को कुछ कह रहे ही नहीं, तो पत्नी क्या करती है, अरे मेरा पति को सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी में ज्यादा देर नहीं रुकती है और चले जाती है। जब पति पूछता है क्यों इतने जल्दी क्यों है यार, अच्छे बड़े बड़े अच्छा अच्छा बनाया गया है डिनर, अभी थोड़ा समय ही बाकी है, डिनर करके निकलो ना। नहीं नहीं, ये देखो ये लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इधर रहना कोई मुझे उचित नहीं लग रहा है, चले जाती है। वैसा ही लक्ष्मी माँ किसी के घर में नहीं रहेगी जिसके घर में नारायण का पूजा नहीं होता है। तो अगर हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये कहानी, राजा बहुत सारे लोगों को अपना जो भी मांगते हैं दे रहे थे और इतना फेडअप हो गया, हर दिन इतने लोग आते हैं, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं क्या करता हूं, मैं कल आपको सब कुछ मैं रखता हूं मेरे भवन में, और राज्य में पूरा बताया गया कल सब प्रजा महाराज के घर में, महाराज के भवन में आ जाइए, आपको जो भी चाहिए उसको ले जाइए। क्या करना है, जस्ट आना है, उसको टच करना है, छूना है, जैसे छू लिया वो आपको बस आपका हो गया। जैसे देख लिया सब लोग सुबह इकट्ठा हो गए, अरे हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, केवल जाना है उसको टच करना है, जस्ट टच कर लिया वो आपका हो गया। तो सब लोग आ गए, सब लोग आ गए और जो भी है कोई, अरे बाप रे कितना गोल्ड कितना सोना उठा लिया, टच कर लिया, सोना उनके पास, सोना उनके पास। एक महिला आई, एक कन्या, वो देखती है अरे इतने सारे लोग जो भी टच करते हैं मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। उधर जाके उनसे पूछती है, हे सैनिक मुझे थोड़ा गाइड करो, महाराज है किधर? अरे महाराज का क्या देखते हो, तुम्हें ये वाला चाहिए, गहना चाहिए, इस तरफ जाओ। गाय चाहिए, इस तरफ जाओ। अगर जमीन चाहिए, उस तरफ जाओ। आप जाना है, सब कुछ रखा गया है, आप टच करो, आपका हो गया। जमीन एक 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 एकड़, चार एकड़, दस एकड़, जो भी है, एक एक जगह का सब कुछ लिखा हुआ है। आप जाओ, महाराज का क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं महाराज से मिलना है, महाराज से मिलना है। इतना होने के बाद भी चलो ठीक है, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, बताए फिर। अरे भाई, महाराज तो इधर नहीं दिख रहे, बताइए इधर से महाराज के पास कैसे जाना? माता जी देखिए, इतने सारे लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं, आप एक बार आंखें खोल के देखो। नहीं नहीं सुनती है वो, महाराज के पास ही जाना है। ठीक है, महाराज के पास गई, महाराज से बोलती है, महाराज आपने अनाउंसमेंट किया था कि जो भी टच करते हैं, जिसको जो भी हम छूते हैं, वो हमारा हो जाएगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? जमीन चाहिए, उस तरफ जाओ। गाय चाहिए, इस तरफ जाओ। गहना चाहिए, इस तरफ जाओ। सोने का सिक्के चाहिए, इधर जाओ, इधर जाओ। महाराज और एक बार बोल सकते हो आपने क्या अनाउंस किया है? इधर जो भी है, जो छूते हो, वो आपका हो जाएगा। महाराज आप सच बोल रहे हो? अरे महाराज के पास जाके महाराज को टच कर लिया, महाराज का टच कर लिया। महाराज बोलते, अरे ये क्या कर दिया तुमने? महाराज आप बार बार बोले हैं कि इधर जो भी है छूते हैं तो अपना बन जाता है। मैं आपको टच कर लिया, आप मुझे हो गए हैं, मुझे आप शादी कर लीजिए। होते हैं बहुत बुद्धिमान हो तुम, करके वो शादी कर लेते हैं। तो देखिए महाराज के पास बहुत बहुत है, उसमें से दे रहे हैं, तो महाराज के पास और कितना होगा सोचिए। ये कितना बुद्धिमान है, महाराज को ही अपना बना लिया तो सब कुछ अपना हो गया। ऐसा ही अगर हम भगवान को अपना बनाते हैं, अगर पैसे के पीछे नहीं पड़ते हैं, भगवान को अपना बनाते हैं, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर जो पैसे के पीछे पड़ते हैं, मरने के बाद भी वो क्या करते हैं, पैसा ही पैसे पैसे, भूत बनने के बाद भी, भूत बनने के बाद भी। अरे भाई मर तो गया, नहीं उसका आत्मा उधर ही चाहिए, उसके पास ही। और पैसे पैसे मिलना है, मैं घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ा 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 बड़ा। अभी मर गए हो ना, तुम्हारे शरीर गए कुछ भोगने का, फिर भी देखिए। तो अगर हम भगवान को अपना बनाते हैं, भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, तो भगवान सब कुछ देंगे। अध्याय 8 श्लोक नंबर 28 में भगवान बता रहे हैं, वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव, वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् आत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदों को पढ़ने से, वेदेशु यज्ञेशु यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दानेशु दान करने से, जो भी फल मिलता है, कोई बहुत धनी हो जाते हैं। कैसे धनी होते हैं? उन्होंने दान दिया है, पुण्य कार्य किया है। भगवान बताते हैं ये जो वेदों को पढ़ने से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से, दान करने से जो पुण्य मिलता है, वो जो भक्ति करते हैं उनको जरूर मिलेगा, और भगवत धाम भी मिलेगा। वेदेश, ये अध्याय 8 श्लोक नंबर 28 में भगवान भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। इसलिए जब आप भगवान के भक्ति करते हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा, उसके लिए फिर दोबारा दोबारा प्रयास करने का मतलब है ही नहीं। बहुत सारे लोग बाहर के लोग बोलते हैं इस्कॉन मंदिर में बहुत पैसे हैं, हम बोलते हैं क्यों नहीं, भगवान का पूजा पाठ करो, कृष्ण का सेवक बनो, दास बनो, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। अगर पैसे के पीछे पड़ते हो वो कभी नहीं मिलेगा, ये लॉजिक को समझना चाहिए। तो हम ओरिजिनली भगवान के सेवा में गोलोक वृंदावन में बहुत मस्त थे, भगवान के सेवा में किसी न किसी कारण से हम आ पड़े हैं इस मृत्यु लोक में। तो इस मृत्यु लोक में आ गए हैं जो भी रीजन हो, कुछ लोग ऐसे बताते हैं जैसे कोई माला कर रहे हैं भगवान के लिए, माला कर रहे हैं राधा कृष्ण के लिए और भगवान को अर्पण कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन ये सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा सुगंधित माला बना रहा हूं, भगवान को दे रहा हूं, भगवान पहन रहे हैं, अगर मैं पहन के देखूं कैसे लगता है, भगवान को देने के पहले ही अरे कितना अच्छा लग रहा है। भगवान देखते हैं तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो या भगवान को भूल के भोगना चाहते हो। ये जगह जो है भगवान को भूल के भोगने का जगह नहीं है, चलो जाओ इधर मृत्यु लोक जो हमारा धरती है। तो इधर आ गए, तो हम तो आ गए, हर जीव जो भी है इधर आ गए हैं। अगर हम भगवान को फिर प्राप्त करना है तो हम भगवान का शरणागत होना चाहिए। जैसे आ गए इस धरती पर ये तीन हमें पकड़ लेता है, तीनों गुण पकड़ के हमें नचाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण में रह के भी बहुत सारा पुण्य काम किया और वो पुण्य को भोगने के लिए स्वर्गलोक गया, स्वर्गलोक में बहुत साल रहा, फिर किधर आना है, फिर आना ही पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में भगवान बता रहे हैं किधर भी जाओ, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामु पेच्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान को प्राप्त करने से ही हमें पुनर्जन्म नहीं मिलता है। स्वर्ग लोक गए और लोक गए, कोई भी लोक गए उधर बड़ा भोग लिया, ऐसा नहीं कि वो भोग परमानेंट है, नहीं, फिर इस धरती पर आना पड़ता है। इसलिए हम ये जन्म मृत्यु चक्कर, छोटा बच्चा बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया, ऑफिस जाने लगा बूढ़ा हो गया मर गया, ऐसा नहीं कि मरने के बाद खत्म। आत्मा कभी नहीं मरता है, दूसरा शरीर मिलता है उनके कर्म के अनुसार। फिर 84 लाख ऐसे अलग अलग जीव है जिसमें घूम घूम के फिर मनुष्य शरीर मिला, भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान का सेवा नहीं करता है, भगवान का शरणागत नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो जन्म मृत्यु चक्कर में ही पड़े रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमें बहुत सरल विधि बताए हैं कि कैसे हम इस जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आ सकते हैं। हम जो भी सुनते हैं ये गुरु परंपरा से ही सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आ गया बड़ा बुद्धिमान बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन, वो कहते हैं मेरा दिमाग में ऐसा आइडिया आ रहा है, इस श्लोक का अर्थ ऐसा ही है, मुझे ऐसा मेरे अंदर ऐसा प्रेरणा हो रहा है। प्रभु जी आपका गुरु कोई है? मेरा गुरु कोई नहीं है, मेरा अपने आप मेरे अंदर चीजें आ रहा है, ये हम नहीं मानते। क्योंकि जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास, व्यास जी से मध्वाचार्य जी, ऐसे ही होके हमारा परंपरा चलता है। और प्रभुपाद कहते हैं एज इट इज, जैसे उनके गुरु ने जैसे कृष्ण ने कहा है वैसा ही हम बोलेंगे। तो हम जब परंपरा में रहते हैं वो सुनते हैं तो हमारे अंदर सच्चा ज्ञान मिल जाता है, नहीं तो क्या होगा, एक हाथी को खड़ा कर दिए, 6 अंधे छह अंधे बता रहे हैं, हाँ भाई ये हाथी है, ये वाला हाथी ऐसा रहता है जिसका कान बड़े बड़े पंखे जैसे रहता है, बड़े बड़े पंखे है, ये हाथी मतलब पंखा है। अरे और जो इसको पकड़ा है, पूंछ को पकड़ा है, हाथी मतलब रस्सी है और कुछ नहीं है, हाथी से मत डरो। हाथी मतलब दीवार है, हाथी मतलब पेड़ है, हाथी मतलब तीर है, हाथी मतलब सांप है। तो ये अंधे लोग जिनको जितना ज्ञान है वो अपने आप बताते हैं। और ऐसे अगर हम सुनने में जाते हैं, अगर ऐसे सुनते हैं, हमारे अंदर भक्ति जीर्ण हो जाता है, हम सही रास्ते पर नहीं जाते हैं। इसलिए परंपरा से ही हम सुनना चाहिए। तो भगवत गीता में भगवान भगवत गीता का ऑलमोस्ट एंड में 18 अध्याय 61 में भगवान बता रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। सब जीव यंत्र में बैठे हैं और उस जीवों को कोई घुमा रहा है। तो जैसे घूम रहे हैं, अगर इधर से किसी को चक्कर आया, घूमना बंद होना है, तो किसको बोलना चाहिए, किसको पूछना चाहिए, जो चला रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को अरे भाई थोड़ा बंद करो, अरे भाई थोड़ा बंद करो, इधर ही एक दो है या पीछे है, दिख रहा है, अरे भाई थोड़ा बंद करो मुझे चक्कर आ रहा है, नहीं, उनसे बोलना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि यंत्रारूढानि मायया, यंत्र में बैठ गए है और उनको घुमा रहा है, हर एक के हृदय में बैठा है। और आगे श्लोक में तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम तानम प्राप्यसि शाश्वतम। उनके शरण में जाओ और उनके शरण में जाने से क्या होगा, शांति प्राप्त होगा और आपको भगवत धाम भी प्राप्त होगा। तो इतना बोलने के बाद भगवान बताते हैं अगला श्लोक 63 में, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुख्यात गुख्यतरम मया विमृशेत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान इतना बोलने के बाद बता रहे हैं, देखो मैं बहुत गुह्य ज्ञान तुम्हें बताया हूं अर्जुन, और इसको ऊपर विमर्श करो, सोचो, और तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम गधे बना तो भी तुम्हें मैं खाना अरेंज करूंगा, चींटी बना तो भी मैं अरेंज करूंगा, तुम इंसान बने तो भी मैं अरेंज करूंगा, अगर मेरे दाम में आए तो भी मैं आपको देखभाल करूंगा, देखभाल तो करना ही है, मगर तुम सोच लो, अगर जन्म मृत्यु चक्कर में पड़े हो, तुम बाहर आना नहीं आना तुम्हारे हाथ में है, यथेच्छसि तथा करो, तुम्हें थोड़ा सा स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता को तुम जैसे यूज करना चाहते हो वैसे यूज करो। हमारा मन अगर हम ठीक से इस्तेमाल करते हैं वो हमारा मित्र बन जाता है और भगवान के शरण में चले जाता है। अगर हम हमारे मन को ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे वही हमारे शत्रु बनता है। मन को भगवान के सेवा में लगाएं, भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में बताएं और भगवान के बारे में चर्चा करें तो मन थोड़ा अधीन में होता है। अगर मन को बार बार जैसे इंद्रिय कहता है, इंद्रिय नचाता है, वैसे मन अगर नाचने लगा, टीवी देखो, ये करो वो करो, इससे खुशी मिलेगा, इससे खुशी कभी नहीं मिलेगा, वो ये एक्चुअली आपका शत्रु है, क्योंकि जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर नहीं निकाल रहा है। तो इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, मेरा भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कुछ सालों साल तपस्या करो, बहुत सिंपल चीज 18:65 में, मेरा सदैव चिंतन करो, और मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान को नमस्कार करने से आपका 10 रुपये चले गया? हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से आपका 1 पैसा जाता है क्या? नहीं, 1 पैसा नहीं जाता और आपको इतना लाभ है। तो इसलिए हम भगवान के सेवा में तुरंत चले जाना चाहिए। देवताओं का आदर तो जरूर करना है, मगर ऐसा नहीं सोचना है कि देवता हमें जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकालेंगे। कोई आचार्य को ये भी ये नहीं कहा कि जन्म मृत्यु चक्कर से निकालने वाला एक्स वाई जेड अदर देन भगवान के अलावा, कृष्ण के अलावा, मुरारी नारायण के अलावा और कोई है? और कोई नहीं है। अगर हम इतना समझने के बाद भी हम भगवान के शरण में नहीं जाते हैं तो एक गधा के जीवन और मनुष्य के जीवन में अंतर नहीं है। गधा, छोटा गधा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया और गधा का गधी मिल गई, उसका उसका अपना परिवार, गधा गधा के जैसे काम कर रहे। गधा बूढ़ा हो गया, गधा मर गया। छोटा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ऑफिस चलने लगा, नौकरी करने लगा, कुछ करने लगा, उनको अपना पत्नी मिल गई, अपना परिवार हो गया और गधे के जैसे काम कर रहा है, बूढ़ा हो गया, मर गया। भगवान को स्मरण नहीं किया, भगवान के सेवा में नहीं गया, भगवान के शरण में नहीं गया तो गधा और इंसान के अंतर क्या बड़ा है ही नहीं। तो हम अपने आप को कितना तक भगवान के शरणागत हो चुके हैं हम चेक करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए भगवान के सेवा में। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत सरल विधि जैसे प्रभुपाद जी ने बताए हैं, हर दिन कम से कम 16 माला करके हम और ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं है ना? जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराणम की जय। जय श्री राधे।